इंफॉर्मेशन दी, और यहाँ अब वो क्रिमिनल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि तुम लोग जो है अलग हो जाओ, यानी अलग हो जाओ मींस अलग लाइन में खड़े हो जाओ, अलग प्लेस में जाके बैठो, इसलिए कि दुनिया में तुम क्राइम करने के बावजूद, जुर्म के बावजूद तुम लोग इनके बीच में अपने आप को छुपा के रहे और किसी को पता नहीं चलने दिया कि तुम मुजरिम हो, या तुमने अपने मुजरिम मुजरिमाना जो अमल है उसे अपनी ताकत के जरिए से पर्दापोशी की उसकी, या कोई भी ऐसे रीजन की। लेकिन आज ये चीजें नहीं हो सकती, आज पॉसिबल ही नहीं है। ना आप पावर को यूज करके ये काम कर सकते हो, ना छुपा सकते हो, ना कोई विदाउट एविडेंस या बेनिफिट ऑफ डाउट इस तरह की कोई चीज तुम लोगों को आज नहीं मिलने वाली है। लिहाजा तुम लोग अपनी क्लियर आइडेंटिटी के साथ मोमिनीन से फासला रख के अलग थलग होके अलग लाइन में जाके खड़े हो जाओ, यानी मुजरिमों की जो लाइन होगी, जो जगह होगी, वो बिल्कुल अलग थलग होगी। ये बात आ गई। अब जो अगली आयत आ रही है, ये आयत और इस तरह इससे रिलेटेड बहुत सारी और आयतें ऐसी आयत में से हैं जो इसके अंदर एक पहलू है जिसके ऊपर बड़े बहुत बड़ी बहस है। मुफस्सिरीन कुरान करीम, मुहद्दिसीन और उलमा का शुरू से लेकर अभी तक ये रहा। आइमाए मासूमीन अलैहिस्सलाम से भी इस मौजू को डिस्कस किया गया है, इसके कई पहलू हैं। लिहाजा हम उन गाढ़ी बहसों के अंदर बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, बल्कि इसमें से कुछ हिस्सा हम थोड़ा बहुत है कि एक जनरल पिक्चर मिले कि वो क्या मौजू है जिसकी वजह से इतनी सारी बहस हो रही है, और इसके अंदर जो बाकी जो हिस्से हैं उसको हम छेड़ेंगे। फरमाया, अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुद शैतान इन्नहु लकुम अदुव मुबीन। ए औलाद आदम, क्या हमने तुमसे अहद नहीं लिया था या वादा नहीं लिया था कि तुम शैतान की परस्तिश न करना, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ओपन एक एनिमी एनिमी वैसे है। यानी इन चीजों के बाद, यानी मुजरिमीन को अलग डिक्लेयर करने के बाद, फिर यानी एक तरह से ये जो अंदाज मुखातब है ये जो है फिलहाल इस तफसीर की हद तक मुजरिमों से ही मुखातब है, अल्लाह और सबसे मुखातब है कि देखो हमने पहले ही तुमसे वादा लिया था या अहद किया था, वादा लिया था कि तुम जो है शैतान तुम्हारा एक खुला दुश्मन है, तुम उसके पीछे मत जाना, उसको फॉलो मत करना। तो लेकिन तुम लोगों ने किया और नतीजा अब ये है कि तुम क्रिमिनल्स में से हो, जराइम कर चुके हो, तो लिहाजा अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। अब सवाल ये है कि ये वादा कब लिया था और कहाँ लिया था जिसको बतौर दलील खुदा पेश कर रहा है कयामत के दिन। ज्यादातर जो मुफस्सिरीन हैं वो जो है ये कहना है कि ये जो वादा है और ये जो अहद है ये खिलकत से, यानी हमारी इस दुनिया में आने से पहले लिया है हमसे भी, और इसी तरह जो है हमारे जो बाबा हैं या जद अमजद हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी, और ये वादा हमारी रूहों से लिया है परवरदिगार आलम ने इससे पहले कि हम वो रूह जिस्मानी शक्ल में इस दुनिया के अंदर आ जाए। ज्यादातर मुफस्सिरीन इस तरह की तफसीर करते हैं, लेकिन इस तफसीर के ऊपर कुछ एतराजात आ जाते हैं टेक्निकली तौर पर, और हम थोड़ा बहुत उसको हम डिस्कस करेंगे। एतराज नंबर वन ये है कि शैतान तो उस वक्त मौजूद ही नहीं था जिस वक्त अरवाह खलक हो गई थी, और न ही अभी आदम जिस्मानी शक्ल में आया था कि शैतान उसे सजदा न करता, और सजदा न करने के बाद वो शैतान जो है शैतान बन जाता, इबलीस शैतान बन जाता, और फिर खुदा कहता कि देखो ये उसके बाद खुदा कहता कि भाई देखो ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो इससे पहले तो ये सारा जो है वाकयात हुए ही नहीं है। तो अगर आलम अरवा है तो इसका मतलब ये है कि जो अरवा है इंसानिया है वो आदम की खिलकत के बाद खल्क हुई है फिर, तो ये बिल्कुल भी दीगर आयात से मुतसादिम है ये बात और ये नजरिया। लिहाजा जो है ऊपर जो बात यानी की गई है, जो पहले ये डिस्कस की गई और ये दलील पेश की गई है कि भाई ये अरवाह से लिया गया है, तो ये क्वेश्चन आगे खड़ा हो जाएगा। अरवाह से लेते वक्त फिर इसका मतलब शैतान उस वक्त शैतान बन चुका था और वो दुश्मन खुला दुश्मन हो चुका था। तो ये वाकया तो हजरत आदम की खिलकत के बाद का है कि जब मट्टी के अंदर खुदा ने रूह आदम फूंकी और फिर कहा फरिश्तों को सजदा करो, तो उस वक्त का किस्सा है ये तो सारा। वहां से फिर शैतान जो है अपनी ट्रैक बदल चुका है और अपना रास्ता बदल कर वो जो है फरिश्तों के जो है जो हेड थे उससे निकल कर जो है वो जो है शैतान बन गया है। तो फिर ये कैसे जो है मैच करेंगे, इस नजरिए को कैसे एक्सेप्ट किया जाए। यहाँ एक बहस होती है कि दूसरा कहते हैं कि ये असल में अल्लाह सुबहाना व ताला जो इस तरह की जो आयात हैं कि अहद लिया था, या बाज जगहों में लफ्ज अलस्त का इस्तेमाल किया है, ये असल में दुनियाए जर यानी दुनियाए एटम की बात हो रही है। जर कहते हैं आलम जर, अगरची वही एटम नहीं जो आज हमारे पास है, लेकिन उससे सिमिलैरिटीज रखते हैं। कह रहे हैं कि जिस वक्त हम आलम जर में थे, एक बहुत ही बारीक नुक्ते की शक्ल में थे, हमारा वजूद था, उस वक्त जो है की बात हो रही है। और ये जो बारीक नुक्ता होने में हजरत आदम और औलाद आदम सब के सब जो है तखलीक से पहले कुछ इस तरह के मरहले का उन्होंने सामना किया कि वो एक जर की तरह थे, यानी एटम से भी जो है या उसकी मानंद एक शक्ल और सूरत रखते थे। वैसे अरबी जबान में जर जो है वो एटम को ही कहते हैं, जरिया यानी एटमी, तो मैंने इसीलिए लफ्ज एटम को इस्तेमाल किया। और इसके ऊपर कुछ बहुत सारी रिवायात और अहादीस भी हैं, बहुत सारी कुछ चीजें भी हैं जो तकरीबन इसी तरफ इशारा करती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये मसला अभी हल पूरी तरह नहीं हो पाया है कि हम कहें 100% ये इस तरह ही की बात है। अगरचे कुरान मजीद में मौजज़ाती अमल है, हमेशा से ये गुंजाइश रही है, लेकिन जो है उसके बावजूद जो है कोई भी इस मसले में यकीनी तौर पर नहीं कह सकता है। मसलन जो मशहूर आयतें हैं जिसमें फरमाया कि अल्लाह ने इंसान को अपनी फितरत पर खल्क किया है, फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नासु अलैहा की तफसीर पूछी, छठे इमाम से किसी ने जाके तफसीर पूछी कि इससे मुराद क्या है कि इंसान को खुदा ने अपनी फितरत के ऊपर खल्क किया है, या फरमाया कि वनफख्तु फीही मिन रूही, मैंने अपनी रूह इसके अंदर फूंकी है, तो इससे मुराद क्या है। तो छठे इमाम का जवाब था हियल इस्लाम, इस फितरत से मुराद वो दीन इस्लाम है। फतरहुमुल्लाहु हीना अखज़ मीसाकहुम, अल्लाह ने उनको अहद लेते वक़्त, मीसाक के वक़्त और अहद लेते वक़्त उसी दीन की असास और बुनियाद के ऊपर उनका स्ट्रक्चर बनाया। अब ये मीसाक और अहद किस बात पर लिया था, अलग तौहीद की वाहदानियत के ऊपर लिया था, इसीलिए कहते हैं कि वाहदानियत और तौहीद इंसान के फितरत के अंदर पोशीदा है, फितरत के अंदर मौजूद है। उसके बाद इमाम फरमाते हैं काल अलस्तु बिरब्बिकुम, कुरान मजीद की आयत को पेश करते हैं। उसके बाद अल्लाह ने जब ये काम किया, यानी उनके स्ट्रक्चर को तौहीद के ऊपर बेस्ड कर दिया अल्लाह ताला ने, उस वक्त फिर उनसे पूछा कि अलस्तु बिरब्बिकुम, भाई मैं आपका रब हूँ या नहीं हूँ। वफीहिल मुमिनून वफीहिल काफिरून, जबकि ये जो क्वेश्चन था इसमें कोई मजहबी तकसीम नहीं थी, कोई नजरियाती तकसीम नहीं थी, मोमिन और काफर सब के सब से ये अल्लाह ताला ने पूछा, क्योंकि सब की जो फितरत है वो बेस्ट करती है तौहीद के ऊपर। अच्छा, ये इस इशारा करती है ये हदीस उसी आलम जर की तरफ जहां पर हमारी खिलकत हुई, क्योंकि एक साथ जो खिलकत की बात हो रही है, यानी कि एक बात तो ये है कि भाई हर इंसान जो इस दुनिया में आता है उससे पहले वहां पर उससे वादा लिया जाता है, फिर यहाँ भेज दिया जाता है, एक तो हो गई ये बात। तो ये तो इतनी ज्यादा सामने यानी इतनी कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की उसके साथ प्रूफ नहीं हो रही है। मालूम ये होता है कि अव्वल से लेकर आखिर तक यानी इला योमिल कयामत तक जितनी भी मखलूक जितने भी इंसानों ने दुनिया में आना है, वो सब उनकी एक तखलीक एक टाइप की तखलीक हो चुकी हुई है, यानी मौजूदा जिस्म में नहीं, मौजूदा शक्ल सूरत में नहीं, वो आलम जर के अंदर एक तखलीक हो चुकी है, या आलम अलस के अंदर, या आलम अरवाह बाज ने नाम दिया, बाज ने कुछ और तरीके से, वहां पे ऑलरेडी एक तखलीक हो चुकी है। और उस तखलीक के मरहले में परवरदिगार आलम उनसे ये वादा ले रहा है, और उसके बाद इस दुनिया के अंदर वो मुख्तलिफ शक्ल सूरतों में पैदा हो आ जाते हैं। अच्छा, ये एक और थ्योरी आ गई। अब लेकिन यहाँ पर फिर जो है एक मसला आता है, मुझे मालूम है कि तफसीर का एक लेवल रखना है और बहुत ज्यादा एकेडमिक जो कि सिर्फ स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिस्कस करना जरूरी है, उस किस्म की बहसें यहाँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं एक थोड़ी सी एक पिक्चर आप लोगों के सामने क्लियर हो जाए कि किस किस्म की बहस हो रही है, क्योंकि हमारी ये बात तय है कि हम एक हद तक एकेडमिक अंदाज में ही तफसीर को लेकर चलेंगे। आलम अलस्त या आलम जर या आलम खिलकत उला भी कहा गया है, यानी पहली तखलीक जो भी नाम दे दें इसको, मैं वादा और अहद की बात नहीं हो सकती है वहां पर, क्योंकि उसकी वजह क्या है, अब थोड़ी सी हल्की सी इरफानी टच पे जाने के लिए जरूरी है समझते हैं, वो ये है कि वो है आलम शुहूद व मुशाहिदा, वो आलम इम्कान नहीं है ये जो मौजूदा है, कि उस तरह की सिचुएशन जिस तरह की सिचुएशन आयत बयान कर रही है ये ज्यादातर एक ऐसी दुनिया से ताल्लुक रखती है जो आलम इम्कान कहलाती है ना, आलम शुहूद व मुशाहिदा, जो शाहिद व मशहूद है, जो हर चीज को वहां देख रहा है, हकीकतें पोशीदा नहीं है उसके सामने, वहां वो जहां अल्लाह सुबहानव की ताकत को और कुदरत को बराह रास्त मुशाहिदा कर रहा है, ना कि मखलूक के जरिए मुशाहिदा नहीं कर रहा है, उसने वहां चांद सितारे जमीन और आसमान और दीगर मखलूकात को नहीं देखा कि खुदा की कुदरत को पहचान रहा है उसकी तखलीक के जरिए से या उसकी जो है क्या कहते हैं मखलूक के जरिए से, ये तो नहीं है, वो तो आलम हक को हकायक को पेश करना है वहां पर, ना वादा लेना की बात हो सकती है, जैसे फरमा अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, यानी यहाँ पर तो जो अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला वाली आयत है वो आयत तो गैब के पर्दे के हट जाने की बात कर रही है, अलस्तु बिरब्बिकुम बराह रास्त मुखातब हो रहे हैं, नहीं फरमाया कि कोई और चीज नहीं आ रहा वहां पर, कोई वास्ते से बात नहीं हो रही है, ये तो शुहूद और शाहिद और डायरेक्ट बात करने की बात आ रही है कि देख रहे हैं मुशाहिदा कर रहे हैं अल्लाह को मुशाहिदा कर रहे हैं, अल्लाह मखलूकात के सामने जो है बराह रास्त पूछ रहा है उनसे, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, सबने कहा जी बिल्कुल आप हमारे परवरदिगार हैं, यानी गैब के हरम से पर्दे की हटाने की बात हो रही है यहाँ पर, लिहाजा इसीलिए मैंने अर्ज किया कि इससे ज्यादा हम बहस नहीं करने वाले इसके अंदर, जो भी है ज्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे, बहरहाल जो भी है वो एक दुनिया है जो आलम जर है, आलम अरवा है, खिलकत उला है, आलम अलस्त है, हमसे वादा लिया गया है, मतलब हमारी फितरत के अंदर तौहीद को रखा गया, जो छठे इमाम ने फरमाया, मसले को हम यूं समझ सकते हैं अपने उस की हद तक, वो ये है कि हमें हमारी फितरत तौहीद के ऊपर बेस्ड है और हमारे वजूद के अंदर तौहीद मौजूद है, ये अलग बात है कि हम उसे आलूदा करते हैं और नहीं कर सकते हैं। बाज ऐसे उलमा गुजरे हैं, मैं मासूम की बात नहीं कर रहा, ऐसे औरफा उलमा गुजरे हैं जिन्होंने यानी अपनी रूहानी तहारत और पाकिजगी इतनी ज्यादा हासिल कर ली है कि वो कहते थे अपने दीगर उलमा से कि हमें अभी तक उस आलम अहद या आलम जर या आलम अलस्त में जो हमसे वादा लिया गया था वो याद है, हमें याद आता है कि हमसे वहां खुदा ने पूछा था। देखें ऐसे लोग भी हैं कायनात में, ये कोई न कहे कि ये नहीं हो सकता है, ये जान छुड़ाने के लिए हम लोग ये बहाने ढूंढते हैं, वगरना हम ही इंसानों में मासूम की बात नहीं हो रही है, मासूम का मकाम कोई और है, ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे उलमा व उरफा गुजरे हैं, मसलन इशारा करता हूँ आयतुल्ला बाहुद्दीनी मरहूम के बारे में भी कुछ इस तरह की इशारों में चीज़ें मिलती हैं, आयतुल्ला बहजत के बारे में भी इस तरह के इशारे मिलते हैं, हत्ता इमाम खुमैनी के बारे में भी कुछ इस तरह के इशारे मिलते हैं कि वो इन कैटेगरीज में से थे, कि उस वो जो अलस्तु औला वाली बिरब्बिकुम अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला या जो है अलम अहद अलम अखद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान, ये जो वादे और वहीद हैं वो याद हैं उन्हें अभी भी, खुदा जाने कितने हजार साल पहले वो लिया था, उनकी तख्लीक तो अब दुनिया में अब हुई है 19वीं सदी में हुई है, लेकिन खिलकत तो कब हो चुकी थी, जर की शक्ल में, एटम की शक्ल में, किसी और शक्ल में, तो एटम मैंने इसलिए कि एटम क्योंकि फिर वो मटेरियलिस्टिक चीजें आ जाती हैं, क्योंकि मटेरियल तो नहीं था वो आलम मुशाहिदा में, तो मटेरियल तो होता नहीं, बॉडी तो वहां नहीं होती, तो इसलिए जर के जो है एटम ट्रांसलेशन कम्प्लीटली करना भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन समझाने की हद तक, तो वो कहते हैं जी कि हमें इसका जो है मालूम था। रिवायात है, बहुत सारी रिवायात हैं, ये आखिरी रिवायत इस मौजू के ऊपर पढ़ते हैं कि फरमाया खलक अल्लाहुल अरवाह कबल अल अजसाद, ये तो वाज़े है कि फरमाया कि अल्लाह सुबहान व तआला ने रूहों को जिस्मों से पहले खलक किया है, ये एक राज है और ये राज अभी तक मौजूद है, इंशाल्लाह कि बारहवें इमाम तशरीफ लाएंगे तो उस वक्त ये सारी जो डीप इल्मी बहसें हैं जो उस जमाने की उम्मतों के इतने पल्ले नहीं पड़ती थी ये चीज़ें इतनी ज्यादा, मगर ये कि बहुत चंद लोग होते थे जो समझते थे, सलमान व अबू जर जैसे, वो ऐसे राजों से वाकिफ होते थे, हर किसी के लिए समझने के काबिल भी नहीं था। आज भी बहुत से लोगों के लिए जब बहुत ज्यादा गहरी अलमी बात सामने आती है तो फिक्री बदहजमी शुरू हो जाती है और वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि कैपेसिटी नहीं होती इतनी ज्यादा। कैपेसिटी पैदा करने के लिए, यानी कि कैपेसिटी पैदा नहीं कर सकते, कैपेसिटी पैदा कर सकते हैं, कैपेसिटी पैदा करने के लिए कुछ जाहिर है कि प्रोसीजर्स को उनको फॉलो करना पड़ता है। आयत नंबर 61 में फरमाया वनअबुदूनी हाजा सिरातिम मुस्तकीम, और ये कि मेरी बंदगी करना यही सीधा रास्ता है, सिरात मुस्तकीम है। असल में यहाँ ये फरमाना चाहता है अल्लाह सुबहाना व तआला, ये दीन असल में यही सिरात मुस्तकीम, जो दीन तुम्हें दिया है इसी के पीछे चलना, यही तुम्हारी सिरात मुस्तकीम जिसकी तुम तलाश में हो ना, वो यही दीन है। दीन यानी सिरात है, यानी रास्ता है। बहुत थोड़ी सी एक बारीक नुकता है इसके अंदर, देखें एक वक्त रास्ते की बात हो रही है, एक वक्त रास्ते में चलाने वाले की बात हो रही है, एक वक्त रास्ता दिखाने वाले की बात हो रही है। ये जो दो अलग चीजें हैं, एक रास्ता है जिस पर चलना है, एक वो जो उस रास्ते पर चलाने वाला है जिसके पीछे चलना है, एक वो जो उस रास्ते को दिखाता है उसके पीछे चलना है। हमारे पास यानी रास्ते में चलाने और दिखाने के टूल्स हैं, अल्लाह ताला ने मुकद्दस और ताहिर और पाक टूल्स दिए हैं। कुछ हमारे वजूद के अंदर रखे हैं, कुछ बाहर से, कुछ इंटरनल हैं, कुछ एक्सटर्नल हैं। एक्सटर्नल वाज़े है आप लोगों को, अंबिया की शक्ल में, औलिया की शक्ल में, पैगंबरों की शक्ल में, किताब की शक्ल में, वही की शक्ल में, वही आखिरी। जो इंटरनल है हमारे खुद वजूद में है वो अकल है हमारे पास, हुज्जत खुदा है, नबी ये बातिन है। अच्छा, ये अकल खुद रास्ता नहीं है, ये अकल असल में सिरात नहीं है, बल्कि ये अकल है सिराज। सिराज यानी कहते हैं चराग को या रोशनी को, ये लाइट है असल में। अकल 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 कोई रास्ता नहीं है कि उस रास्ते पर चला जाए, अकल का काम रास्ते को पहचानवाता है। ये जैसे जो साइंस लगे होते हैं मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर, साइन बोर्ड होते हैं, ये साइन बोर्ड हमें गाइड करते हैं, खुद तो रास्ता नहीं है, ये रास्ते की गाइड करते हैं। अकल भी खुद रास्ता नहीं है, गाइड करता है, इसीलिए क्योंकि उसका काम गाइड करना है तो उसकी भी कुछ लिमिटेशन है। बहुत सी जगहों में उसकी ज्यूरिस्टिक खत्म हो जाती है, उसकी जो कैपेसिटी है वो खत्म होती है, वो इतना कैपेबल ही नहीं है, इतनी ताकत ही नहीं रखता है अकल कि बाज जगहों में कहता है भाई ये कुछ चीजें मैं समझ सकता हूँ लेकिन डिटेल्स में जाना है मेरी समझ में नहीं आ रही है। तो फिर यहाँ से क्या शुरू होता है, यहाँ से शुरू हो जाती है वही का मरहला शुरू हो जाता है। इसीलिए फरमाया कि अकल काफी नहीं, इसीलिए फरमाया अंबिया क्यों आए हैं, अकल दिया है नबी बातिन ने, हुज्जत खुदा है, तो फिर अंबिया की जरूरत क्यों आई है, वही की जरूरत क्यों है, मासूम और इस्मत की जरूरत क्यों है। तो अंबिया ने फरमाया देखो हमारे आने का जो मकसद है ना वो तुम्हें अलिफ और बे पढ़ाना नहीं है, तुम्हारी जिंदगी के अलिफ और बे पढ़ाना हमारा काम नहीं है, वो तुम्हारे वजूद के अंदर मौजूद है। वअल्लमकुम मा लम तकुन तअलमून, हम आए हैं कि उस चीज की तुम्हें तालीम दे दें जिसे तुम खुद नहीं कर सकते हो, तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है, यानी तुम्हारी अकल के जरिए से नहीं कर सकते, तजुर्बे के जरिए से नहीं कर सकते, गुज़श्ता नस्लों को पास्ट और माजी को देख के रिसर्च करके उससे इंफॉर्मेशन निकाल के फ्यूचर को बनाने का जो प्लानिंग है वो सारा का सारा तुम्हारे बस में नहीं है। एक हद तक तुम जा सकते हो, एक हद के बाद तुम्हारा भी जो तुम्हारी भी लिमिटेशन शुरू हो जाती है, लिहाजा वहां से वही का काम शुरू होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि बास चीजें ऐसी हैं अंबिया की, जो अंबिया की क्रिएटिविटी, हालांकि ये लफ्ज दुरुस्त नहीं है, तमाम चीजें जो है परवरदिगार आदम की क्रिएशन में से है लेकिन अंबिया की क्रिएटिविटी में से आती है। जैसे कि उनमें से एक अहम चीज है यही रूहानियत, मानवियत, जन्नत जहन्नम, कयामत, फरिश्ते, शैतान, ये अगर अंबिया ना आए तो हमें इतनी डिटेल कहाँ से मिलेंगी। जन्नत है क्या भाई, कहाँ से होगी, कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह हिसाब किताब होगा, डिटेल्स क्या है, कब्र के बाद क्या होगा, हमें कुछ भी नहीं पता होगा। हमारी अकल इतनी जज कर सकेगी कि हाँ जी इस इंसान की जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए, 70-80 साल के बाद मिट्टी में जाके खाक में शामिल हो जाना ये हदफ नहीं हो सकता उस खालिक हकीम दाना का जिसने इतनी बड़ी मुनज्जम कायनात बनाई है। तो अकल इतना कह सकती है इसका कोई बड़ा मकसद होना चाहिए, वो बड़ा मकसद क्या होना चाहिए नहीं पता। तो मरने के बाद भी कोई चीज होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, अदालत नाम की कोई चीज होनी चाहिए जहां पर यहां से जो छूटा है उसको सजा मिले, उसको जजा मिले, लेकिन कब कैसे क्या ये हमें नहीं पता। अकल कहेगा इससे आगे मुझे नहीं पता, वही आके खबर देगी, गैब की खबर हम वही के जरिए से दे देंगे। तो ये कुछ जो है मुख्तलिफ वो चीजें। अकल और फितरत इंसानी खुद इंजीनियर नहीं है कि ये बैठ के इंजीनियरिंग करेंगे, बल्कि इनका काम क्या है, वो रास्ता बताते हैं, रास्ता जो है दिखाते हैं, रास्ता बनाते नहीं हैं, रास्ता दिखाते हैं, रास्ते के बारे में रहनुमाई करते हैं। बस जो है हमारे पास सिरात मुस्तकीम को समझने के दो चराग हैं, जो हमें खुद रास्ता नहीं है बल्कि रास्ता दिखाते हैं। अलबत्त यहाँ एक बहस आती है, वो ये है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम क्योंकि कम्प्लीटली दीन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए उनके पीछे चलना यानी खुद सिरात के पीछे चलना है। इसीलिए जो बाज रिवायात और आयात के अंदर भी इशारा मौजूद है कि मसलन फरमाया अल्लाह के रसूल खुद तुम्हारे लिए सिरात मुस्तकीम है, फरमाया हजरत अली अलैहिस्सलाम के बारे में और उनकी इमामत और विलायत के बारे में फरमाया कि सिरात मुस्तकीम है, सिरात अली हक्कहु नमसिकु हक्कहु, जैसे वो जो उसकी तशरीह भी करते हैं कि फरमाया कि जो सिरात मुस्तकीम है वो क्योंकि हजरत अली अलैहिस्सलाम है, उसे थामे रखो, इसलिए कि ये हक इनके साथ है, हक इन जो है ये हक के साथ है, हक इनके इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि ये नुमाइंदे खुदा हैं, इसलिए ये खुद सिरात हैं, ये खुद रास्ता हैं, इसके अलावा कि खुद रहनुमा भी हैं, खुद जो है चराग भी हैं, सिराज भी हैं, रहनुमा भी हैं, इमाम भी हैं, आगे लीड करके हमें ले भी जा रहे हैं और खुद रास्ता भी हैं। लिहाजा जो है इस चीज को भी एक छोटा सा नुक्ता था। आयत नंबर 62 में फरमाया लकद अदल्ल मिनकुम जिबलन कसीरा अफलम तकूनू ताकिलून, और बतहकीक उसने तुम में से बहुत सी मखलूक को गुमराह कर दिया है। ये जो अंदाज है गुमराह कर दिया है, ये इस अरबी जबान का स्टाइल है, मतलब ये नहीं है कि खुदा ने उनको खलक किया फिर खुद ही गुमराह कर दिया, ये कतई तौर पर मुराद नहीं है, बल्कि असल में ये फरमाना चाहते हैं, खुदा यहाँ पे इशारा करना चाहते हैं कि एक बात जहन में रखो कि वो जो गुमराह लोग हैं, वो जो गुमराही के रास्ते पर खुद अपनी मर्जी से और पूरी फ्रीडम के साथ खुद जा रहे हैं, उनके पास जो एनर्जी है वो भी खुदा की ही है। यानी अगर फर्ज करते हैं कि इब्ने मुलजम मुरादी लानतुल्लाह अलैह अगर शब 21वीं 19वीं की रात मौला के सर अकदस पर अगर तलवार से हमला करता है, तो ठीक है, ये तलवार उठाकर हमला करना, प्लान करना, सोचने, वो बिल्कुल आजाद, खुद उसने डिसीजन लिया, खुद किया है, लेकिन जो एनर्जी यूज कर रहा है, जो ताकत वो यूज कर रहा है, वो अल्लाह की खुदा दादी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने निजाम खलकत इस तरह बनाया है कि मुजरिम हो या मुनसिफ हो, सबको खुदा वंद मुताल ने एनर्जी दी है, ताकत दी है, उसकी अपनी नहीं है। ये नहीं कह सकता इब्ने मुलजम की अपनी ताकत थी, उसकी अपनी चीजें थी, ये नहीं कह सकते। असल में जो इशारा करना चाहता है वो ये बारीक नुकता हमें समझाना चाहता है, प्लस कुछ और चीजें हैं कि हम इससे पहले थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। असल में ये आयत ये बतहकीक उसने तुम में से बहुत सी मखलूक को गुमराह कर दिया है, इशारा करना चाह रहे हैं गुज़श्ता इंसानी तारीख और वहाँ मौजूद मुख्तलिफ इंसानी जो ग्रुप्स और कबाइल और ट्राइबल्स हैं या मुख्तलिफ कम्युनिटीज हैं, उनकी तरफ इशारा कर रहा है कि ये फरमाना चाहते हैं अगर वो आकिल होते तो दुश्मन की बातों पर यकीन न करते। असल में आयत ये बताना चाहती है, देखें भाई इससे पहले जो लोग थे ना, अगर वो अकल को इस्तेमाल करते, आकिल होते, तो दुश्मन की बात पर तो यकीन नहीं करते। दुश्मन की बात पर कौन यकीन करता है? दुश्मन दुश्मन है, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसकी बातों पर यकीन क्यों करते हो? एक्सटर्नल जो दुश्मन होता है उसकी बात पर यकीन नहीं करते हो, उसके से हमेशा अलर्ट रहते हो, घबरा के रहते हो। कोरोना वायरस दुश्मन है हमारा, इस वक्त हम अलर्ट हैं, पूरी दुनिया अलर्ट है, माइनर से माइनर जो बिल्कुल बारीक चीजें हैं उसको भी हम देख रहे हैं, छोटे से छोटे स्टेप्स हम लोग उठा रहे हैं, हम इतने अलर्ट हो चुके हैं। लेकिन जो हमारा इंटरनल दुश्मन है, अंदर छुपा हुआ दुश्मन है, उस दुश्मन के मामले में हम लोग बिल्कुल गाफिल हैं। तो पहले भी ऐसे लोग गाफिल रहे, वो बाहर के लिए तो वेपन तैयार करते रहे, डिफेंस जो है बनाते रहे, लेकिन अंदरूनी दुश्मन के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया, तो नतीजा ये होगा कि वो क्या हो गया, गुमराह हो गए और तबाह बर्बाद हो गए। क़यामत के दिन अल्लाह सुबहानहु तआला इन गुमराह अफराद से ये पूछेगा कि दुनिया में क्यों तुम लोगों ने दुश्मन की बात पर यकीन किया? देखो आज तुमने दुश्मन की बात पर यकीन किया ना, आज इसका नतीजा तुम देख रहे हो। क्या तुम्हारे पास अकल नहीं थी उस वक्त? तुम लोग बेअकल थे। अगर पागल हो चुके थे तो फिर पागलों के लिए तो खुदा ने मुजरिमों की सब में उनको डालना ही नहीं है, वो तो सफीहा हैं, صفیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیچارے عقل نہیں رکھتے, تو ان کا تو حساب کتاب ہی اور ہوگا, خدا کی طرف سے کوئی اور چیز ہے, لیکن تم لوگ تو عقل رکھتے تھے تو تم لوگوں نے کیا, تو آج نتیجہ دیکھو. حاضی ہی نتیجہ کیا ہے, حاضی ہی جہنم اللتی کنتم توعدون, یہ وہی جہنم ہے, یہ وہی سزا کی جگہ ہے, یہ وہی پریزن ہے, یہ وہی پنشمنٹ والی جگہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. ہم نے پہلے ہی تمہیں بتایا تھا کہ اگر جو ہے دنیا میں جس طرح تمہارے لیے پنشمنٹس رکھی گئی تھی کہ قتل کرنے والے قاتل کی سزا یہ ہوگی, ڈرگ بیچنے والے کے ساتھ یہ کیا جائے گا, کرمنل جو ایکٹیویٹی کرے گا, تو وہ تو تم لوگوں نے سزائیں ڈیسائیڈ کی تھی نا. اب جو خدا نے سزا ڈیسائیڈ کی ہے, اب وہ یہ وہ جہنم ہے جس کے اندر تم لوگوں نے جانا ہے. اب چونکہ دشمن پر یقین کر چکے ہو تو اس کا نتیجہ یہ جہنم ہے جس کے بارے ہم پہلے ہی آگاہ کر چکے تھے. یہ کچھ سرپرائزنگ نہیں ہے, یہ تمہیں اندھیرے میں رکھ کر ہم نے جہنم کی طرف ہم تمہیں نہیں لے جا رہے ہیں, یہ ذہن میں رکھو. پہلے ہی تمہیں سب ڈیٹیل ہم نے دی تھی. پھر آگے فرماتے ہیں اسلوہا الیوم بما کنتم تکفرون, میں آج اسی جہنم میں جلس جاؤ, جا کے جل جاؤ, وہاں پہ ختم ہو جاؤ, اس کفر کے بدلے میں جو تم لوگ کیا کرتے تھے, جو تم لوگ کفر کیا کرتے تھے. اب جاؤ اپنے اعمال کا رزلٹ جو ہے جسے تم نے خود اپنے لیے بنایا ہے, اس رزلٹ کو جا کے دیکھو اور حاصل کرو. آیت نمبر 65 میں فرمایا الیوم نختم علی افواہم, یعنی آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیتے ہیں اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کے بارے میں جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں. یہ ان مجرموں اور گناہگاروں کے بارے فرمایا. دیکھیں آج جو ہے نا زبان دنیا میں بڑی کام آتی تھی, بڑی چلتی تھی, بڑی چرب زبانی کرتے تھے, بڑے ادھر سے ادھر تم لوگ کرتے تھے. اب تمہاری زبان پہ کنٹرول ہوگا, اب جو بات ہوگی وہ جو عمل ہے نا جس کو تم چھپانے کے لیے زبان کا سہارا لیا کرتے تھے, آج جو ہے وہ خود بتائیں گے. تمہاری زبان کو آج ٹائم نہیں دیا جائے گا, فرصت ختم ہو چکی ہے. ہو سکتا ہے کہ یعنی یہ اشارے کی ان کے یعنی ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ ان کا منہ ایسا ہو چکا ہے کہ جیسے وہ گونگے ہو چکے ہیں, اب ان کی جو ہے نا عذاب یعنی وہ بالکل بول ہی نہیں پا رہے ہیں. اس وقت یہ بھی ایک اشارہ یہاں پر ہو سکتا ہے. اس کیفیت اور سچائی اور حقیقت کو دیکھنے کے بعد وہ سچویشن ان کی ایسی ہے کہ اب منہ سے بولنے کے قابل نہیں رہے ہیں, اب ان کے اعضاء و جوارے آئیں گے اور ان کے کفر و شرک اور گناہ کے بارے میں گواہی دیں گے. فرمایا کہ یہاں پر دیکھیں اشارہ کیا ہے ہاتھوں اور پیروں اور اس طرح کے اعضاء جوارے کے, لیکن دیگر آیات کے اندر موجود ہے کہ انسانی جسم کا ہر حصہ گواہی دے گا. حتیٰ بعض احادیث کے اندر ملتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ یہ گناہ ہوا ہے, ضرورت پڑنے پہ خدا جو ہے اس جگہ سے بھی گواہی دلوائے گا, کہے گا کہ فلاں جگہ تھا, ٹائم جو تھا وہ آ کے گواہی دے گا, یہ ٹائم تھا, یہ جگہ تھی, ہاں یہ جرم میرے سامنے ہوا تھا, میں دیکھ رہا تھا اس وقت. کائنات کے ذرات, زمین کے ذرے, للہ جنود السماوات وال عرض, فرمایا کہ یہ جو بھی زمین و آسمان ہے خدا کی فوج ہے, یہ خدا کے جنود اور فورسز میں سے ہیں. تو یہ ذرے اٹھیں گے گواہی دیں گے, یہ پہاڑیں, یہ آسمان, یہ ستارے جو اس وقت چمک رہے تھے, سورج جو اس وقت موجود تھا وغیرہ, بلڈنگ تھی تو بلڈنگ کے جو سٹرکچر, اس کے اندر جو میٹیریل یوز ہوا وہ سب اٹھ کے آئے گا, کہے گا جی یہ جو بول رہا ہے, میں ہم دیکھ رہے تھے اس وقت یہ سب کچھ جرم جو ہے یہ کر رہا تھا, یہ بول رہا تھا وغیرہ وغیرہ. آیت نمبر 66 ہے, اس میں فرمایا اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں, یعنی اندھے کر دیں, پھر یہ راستے کی طرف لبک بھی جائیں تو کہاں سے راستہ دیکھ سکیں, یعنی جب آنکھیں ہی نہیں ہوں گی تو راستہ کہاں سے دیکھ سکیں گے. یعنی اگر اللہ چاہے تو ان کی آنکھوں سے بصارت اور پیروں سے چلنے کی طاقت سلب کر لے تو کر سکتا ہے. اس وقت انہیں معلوم ہو جاتا کہ ان کے پاس چارہ کیا تھا. یعنی یہ اشارہ کرنا چاہ رہا ہے, کئی پہلو اس کے اندر موجود ہیں. کہا کہ دیکھیں ہم چاہتے تو دنیا میں ہی یہ ہو سکتا تھا تمہارے ساتھ, وہیں پر ہم تمہارے ساتھ یہ کام کر, تمہاری آنکھوں کی بصارت اٹھا لیتے, پیروں سے چلنے کی تمہاری جو طاقت ہے اسے ہم اٹھا کر ختم کر دیتے. یہ جو جتنی آیتیں ہیں اور اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں تقریباً وہ کیونکہ سزا اور اس کے حوالے سے بات کر رہی ہیں, تو ہم ملا کے جو ہے جنرلی سب کے اوپر ڈسکس کریں گے. اگلی آیت میں فرمایا اور اگر ہم چاہیں تو انہیں انہی کی جگہ پر اس طرح مسخ کر دیں کہ نہ آگے جانے کی استطاعت ہوگی اور نہ پیچھے پلٹ سکیں گے. یعنی مسخ کرنے کی بات ہو گئی ہے, مسخ یعنی کلوننگ نہیں ہے, مسخ یعنی ایک اس سے دوسری شکل میں ڈال دینا. یہ مسخ دو طرح کے ممکن ہو سکتا ہے, کبھی انسانی جسم اور شکل و صورت مسخ کر جائے, کبھی انسان کی روح جو کہ ان کے اپنے ہی اعمال کے سبب مسخ کر دیا جائے. آپ لوگوں نے بارہا یہ حدیث سنی ہے چوتھے امام کی, اور دیگر ائمہ نے بھی اسی طرح مختلف مناسبات میں فرمایا. احادیث بھی ہیں ہمارے پاس بہت ساری, قرآن کی آیات بھی اشارہ کرتی ہیں کہ حاجیوں کی کثرت سے جو شخص خوش تھا اس کو اس کے سامنے کچھ حقائق امام نے کھولے اور فرمایا کہ دیکھیں یہاں پر شور شرابہ کرنے والے زیادہ ہیں, زجیج ہیں, شور شرابہ کرنے والے ہیں, حجیج کم ہیں, یعنی حاجی بہت کم ہی لوگ ہیں. یعنی ایسے جو لوگ آئے ہیں ان کی نیتیں خالص نہیں ہیں, خالص نیتوں سے نہیں آئے, حلال کا پیسہ لے کر نہیں آئے, حرام کے پیسے سے آئے, دوسروں کا حق مار کے آئے ہیں, پیچھے کتنے مزدوروں کی پیمنٹ نہیں کی ہے, پیچھے کتنے حقداروں کا حق ادا نہیں کیا ہے اور آئے ہیں یہاں پر حج ادا کرنے کے لیے. ہدف یہ ہے کہ جا کے اپنے قبیلے میں قوم میں یہ کہہ دیں کہ بھائی دیکھو میں حاجی بن کر آیا ہوں, میں بھی بالآخرہ حج کروں. یہ سوشل اسٹیٹس کی تلاش میں ہے یا اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں. اتنے ڈٹھائی کے ساتھ جو ہے نا, یہ ایسے ڈھیٹ مجرم ہیں, ایسے ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں, اتنے ڈٹھائی کے ساتھ خود کو بھی جھوٹ بول رہے ہیں, خود سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں. یہ ایسے مثلا بے وقوف بھی ہیں, خود سے جھوٹ بول رہے ہیں, نہیں وہ تو ایسا تھا, وہ تو ایسا تھا, چلو میں حاجی کر کے آؤں, خدا مجھے بخش دے گا. وہ سمجھتا ہے کہ مال غیر سے جا کے میں حج کروں گا تو ہو جائے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئے ہیں یہ سب حاجی نہیں ہیں, ان کی حقیقت یہ ہے کہ ذرا دیکھ لو تم, تو انسانی اس میں یعنی ان کی روح کو سامنے آیا, روح مسخ ہو چکی ہے. وہ نورانی روح جو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ہے ونفخت فیہ من روحی ہے, اس کو اتنا جو ہے ذلیل کر دیا اور اتنی جو ہے پستی میں ڈال دیا ہے کہ مسخ ہو کر انسانی شکل کے بجائے کسی اور شکل میں ڈلی ہے, ایک ایسی شکل جو کہ حیوانی شکل ہے, اور ایسے حیوانات جو اللہ کے نزدیک ٹھیک ہے کہ وہ تمام حیوانات محترم ہیں, مخلوق خدا ہے, لیکن ان کے لیے کچھ خاص قسم کے احکام موجود ہیں, نجاست کے احکام موجود ہیں, حرام ہونے کے احکام موجود ہیں. بعض جانوروں کو بغیر کسی ریزن اور وجہ کے پالنے کے لیے کہا کہ مت پالو ان کو, یہ جنگلوں میں رہیں, آبادیوں سے دور رہیں زیادہ اچھا ہے, بیجا جا کے مارو بھی نہیں, ان شکلوں میں ڈل گئی ہے ان کی روح. تو یہ جو ہے اس طرح کی جو آیات ہیں وہ اس چیز کی طرف توجہ کر رہی, اور جسے ہم لمبی زندگی دیتے ہیں اسے خلقت میں عمدہ کر دیتے ہیں, کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ تھوڑی سی ڈیفیکل آیات ہے. من نعمر ننقص فی الخلق افلا یعقل, جسے ہم لمبی زندگی دیتے ہیں اسے خلقت میں عمدہ کر دیتے ہیں, کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں, دیکھیں روز کا مشاہدہ ہے کہ ایک نہایت طاقتور انسان عمر ڈلتے ہی کس قدر ضعیف و ناتواں اور بے بس ہو جاتا ہے. بہت بڑا باڈی بلڈر تھا, بہت زیادہ ایکسرسائز بھی کرتا تھا, صحت کے وہ بھی رکھتا تھا, لیکن آہستہ 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 اس کا جسم جوں جوں عمر ڈلتی ہے وہ کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے. جیسے کہ بچپن میں بھی وہ بیچارہ جو ہے ڈیپینڈنٹ تھا, کمزوری کے عالم میں تھا, عمر کا ایک حصہ ایسا آ جاتا ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے, دوسروں کے اوپر انحصار کر لے جاتا ہے. کہ جو اللہ ناتواں کو, یہاں پہ یہ کہنا چاہتا, جو اللہ ناتواں کو, یہ مطلب ناتواں مطلب یہ کہ بچپن میں وہ ناتوان تھا, اس کی اپنی ڈیپینڈنٹ تھا وہ, پھر اس کے بعد عمر کے آخری حصے میں بہت سے لوگ ناتواں بن جاتے ہیں, زیادہ عمر ہو جاتی ہے, بیماری بھی آ جاتی ہے اللہ نہ کرے, تو پھر وہ دوسروں کے اوپر انحصار کرنے لگ جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو دو سچویشن, اس کے بیچ میں کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اپنے بس پہ اپنے بل بوتے کے اوپر تھوڑا سا چلتا ہے. تو کہنے کہ جو اللہ ناتواں کو توانا بنا سکتا ہے تو وہ توانا کو ناتواں بھی بنا سکتا ہے, یعنی وہ چاہے تو, اللہ چاہے تو اس سے یہ ساری صلاحیتیں اس کو لے چھین سکتا ہے اللہ, لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا ہے. لہٰذا جس طرح جو ہے بہت سے جو ناتواں لوگ تھے, بچے تھے جو مر گئے تھے, بزرگ عمر بوڑھے تھے جو مر گئے تھے, جو چل پھر نہیں سکتے تھے, اپاہج ہو چکے تھے, قیامت کے دن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جب یہ دوبارہ زندہ ہو کر آئے ہیں تو وہ جو چل نہیں سکتے تھے چل رہے ہیں, وہ جو بچے تھے جو ہے بالکل گہوارے میں تھے اندر, وہ بھی ان کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی کنڈیشن میں ہیں کہ خود سے انڈیپینڈنٹ ہیں, چل پھر رہے ہیں. تو یہ اللہ جو ہے یہ سب کچھ اللہ کے بس میں ہے, اور وہ اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے اور پاسبلٹی ہے, اور دنیا کے اندر بھی یہ چیزیں تم لوگ دیکھتے ہو, لہٰذا تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے. یہاں پر تھوڑی سی ایک پوائنٹس ہیں, وہ یہ ہے کہ جو انسانی باڈی کے حوالے سے اشارہ کیا ہے کہ وہ کمزور ہیں اور یا طاقتور ہیں, اور جسم اللہ کے مرہون منت ہے, اور اللہ اگر نہ چاہتا تو انسان یہ سب کچھ کر نہیں سکتا تھا. حضرت علی علیہ السلام کا ناجر البلاغہ میں ایک دعا ہے, حضرت علی علیہ السلام کی دعا ہے کہ اس دعا کے اندر جسم اور جسمانی اعضاء کے حوالے سے حضرت کچھ نقاط بیان فرماتے ہیں. خدایا, فرماتے ہیں حضرت, خدایا آپ نے ہمیں مختلف جسمانی اعضاء دیے ہیں، پارٹس دیے ہیں، ہم ان اعضاء کو آپ کے حضور پیش کرتے ہیں، لیکن خدایا ایسا نہ ہو کہ پہلے ہم سے ہمارے جسمانی اعضاء کو واپس لے لو، مطلب پہلے یہ کہ مرنے سے پہلے ایسا نہ ہو کہ پہلے ہم اندھے ہو جائیں یا بہرے ہو جائیں یا لنگڑے ہو جائیں، اس کے بعد پھر ہماری جان نکل جائے، یعنی کہ خدایا یہ نہ کرنا، یعنی بس جان نکلے تو اس طرح کی سچویشن میں ہوں کہ جسم ٹھیک ٹھاک ہو، زیادہ کسی کے دوسرے کے اوپر انحصار نہ کرتے ہوں اور ہمیں موت آ جائے، یعنی مرحلہ وار موت ہمیں نہ ملے. مثلاً علماء تفسیر کر کے کہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت جو اشارہ کریں کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ ہم اپنے بچوں کے محتاج بھی نہ رہ جائیں، یعنی بچے جو کہ حسنین علیہ السلام ہو، ثانیہ زہرا، زینب کبریٰ جیسی شخصیات اور ہستیاں موجود ہوں، لیکن حضرت، کیونکہ حضرت اپنی شخصیت کے اعتبار سے اور اپنی کرامت انسانی کو سامنے رکھ کر بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایسے جو ہے الہی و نورانی ہوں، لیکن بالآخر ہیں تو میرے بچے، کہہ رہے ہیں کہ پروردگارہ مجھے یہ بھی قبول نہیں ہے کہ میں ان کا محتاج ہو جاؤں. ان کا مقام عالی و متعالی ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں، ثانیہ زہرا، زینب کبریٰ جو ہے عالمہ غیر معلمہ ہیں، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، میرے لیے جان 1001 مرتبہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن میں پھر بھی نہیں چاہوں گا، میری کرامت یہ گوارا نہیں کرتی. یہ بہت ہی گہری چیزیں ہیں جو حضرت نے، یعنی گہری کرامت کا اظہار کیا ہے یہاں پر. یہ جو مسخ کی آیت آئی ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی کیا کہتے ہیں اینڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور آیتیں اس کے ساتھ مل رہی ہیں، تو ایک اشارہ جو ہے اسی مسخ اور اس کی طرف سے بھی، کیونکہ یہ جو اعضاء و جوارے کی بات کی گئی ہے اور حضرت نے جو دعا کی اس سے لنک اپ ہو رہی ہے، تو میں تھوڑا سا کچھ اشارے کر کے نکلیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ دیکھیں، جو انسانی جسم ہے اور اس جسم کے جتنے بھی پارٹس ہیں، اس کو خدا کی امانت سمجھو، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اپنے آپ کو مالک کامل و اکمل و اتم مت سمجھو. تم لوگ اس کے مالک و اتم نہیں، کل کو یہ ہاتھ جو ہے نا تمہارے خلاف گواہی دے گا، فضول استعمال کیا اس نے، تکلیف دی مجھے بغیر کسی ریزن کے، جسم کو اسی طرح کہے گا کہ فضول کاموں میں مجھے صرف کرتا رہا، یہ فضول کاموں میں مجھے تکلیف دیتا رہا، آنکھیں اسی طرح کہیں گی فضولیات دیکھتا رہا صبح و شام، کوئی جو ہے اس سے صحیح کوئی میننگ فل کوئی کام نہیں کیا اس نے، وداؤٹ اینی کسی اس کے جو ہے فضول چیزوں کے اندر مجھے خرچ کرتا رہا 60, 70, 80, 90, 100 سال ساری زندگی. لہٰذا یہ جو اللہ کی امانتیں ہیں، ان میں سے ہر ایک امانت کی پاسداری کرنا ہمیں بعنوان انسان، ہمارے اوپر جو ہے یہ ایک طرح سے فرض ہے، خواہ جسم ہو یا اس کی خوبصورتی ہو یا اس کی مضبوطی ہو، ہر حوالے سے خیال رکھنا. خوبصورتی ہے تو مطلب یہ نہیں ہے کہ خوبصورتی کو مس یوز کیا جائے، کیونکہ میں ہینڈسم ہوں، کیونکہ میں اچھا لک لائک ہوں، اچھی باڈی ہے، اچھا فگر رکھتا ہوں اور اچھا انٹیلیجنٹ آدمی ہوں یا انٹیلیجنٹ عورت ہوں، تو میں اس کو مس یوز کرنے لگ جاؤں. آج کل تو جو سوشل میڈیا اور اس طرح کی چیزیں ہیں، خاص کر یہ جو یوتھ کے اندر جو پاپولر ہوتی ہوئی جو ایک ایپلیکیشن ہے ٹک ٹاک کے نام سے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا مثلا دیکھ رہے ہیں. اب یہ تو ایک کیٹیگری ہوتی تھی پہلے، جو فلم انڈسٹری سے لنک کرتے تھے یا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے لنک ہوتے تھے، یہ تو کٹیگری ہی الگ ہے، اس سے پھر ایک اور بری کٹیگریاں ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں جو یہاں کے تحفے ہیں. لیکن اب یہاں پر تو یہ کہ ہر آدمی پرسنلی اس کے اندر آ رہا ہے، کوئی مثلا اپنے فگر کو دکھانا چاہتا ہے، کوئی باڈی کو، کوئی خوبصورتی کو، ہدف کیا ہے کہ میکسیمم مجھے لائک مل جائیں، میکسیمم لوگ میرے اوپر کمنٹس کر لیں، میکسیمم لوگ مل کے. یہ مس یوز ہے، یہ جسم کا غلط استعمال ہے، خوبصورتی کا غلط استعمال ہے، جسمانی کمالات کا غلط استعمال ہے. خدا کے حضور اس کا جواب دینا پڑے گا، یقیناً خدا جو ہے ایسے ہی نہیں، یہ نہیں کہے گا کہ تمہیں خوبصورت بنایا تھا تو تم مس یوز کرو. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی اٹریکشن اور خوبصورتی دی تھی کہ صنف نازک ان کے اوپر فرشتے ہوتی تھیں، خاص کر وہ جو ایمان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی تھیں. ایمان کے کنٹرول میں جو خواتین نہیں ہوتی تھیں، پورا واقعہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، تو وہ جو ہے نگیٹیوٹی ان کے اندر آ جاتی تھی، اور نگیٹیو جیسے کہ ایک شادی شدہ عورت جو ہے اس کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا، وہ اٹریکشن کر گئی اور اس نے اتنا بڑا جنجال پیدا کہ پورا سوری یوسف نازل ہو گیا اور جیل بھی جانا پڑا اور کتنے سارے پروسیس گزرے. یعنی مس یوز نہیں، یہ اس لیے نہیں دیا ہے کہ میں اس کی نمائش کروں، मैं इसको जो है ना कोई एग्जीबिशन हॉल में अपने आप को पेश कर दूं एक उसकी तरह तरह के कोई आर्ट या कोई जो है फैन गैलरी की तरह, ये गलत है, ये मिसयूजिंग है जिस्म का। इसी तरह जो है फर्ज करें जिस्म में ताकत है, एनर्जी है, इस ताकत का मिसयूज करना गलत है। इसी तरह जो है और भी बहुत सारी जिस्मानी सलाहियतें हैं, बॉडी बिल्डिंग करना, एक्सरसाइज करना, ये सब चीजें, ये इसकी मुखालिफत नहीं हो रही है, बनना संवरने की मुखालिफत नहीं हो रही है, अच्छा लुक लाइक बनने की, अच्छे कपड़े पहनना, ये तो इस्लाम ने हुस्न करार दिया है। असल में है इस वजूद को मिसयूज करना, जवानी को गलत तरीके से इस्तेमाल करना, अपने जिस्म में मौजूद अगर कोई ऐसी पॉजिटिव चीज है कि जिससे दूसरा इंसान अट्रैक्ट हो सकता है तो उसको गलत यूज करूं, मेरी जबान बहुत अच्छी है, मैं इधर से ऊपर कर सकता हूं बिजनेस के अंदर, तो इस जबान को गलत यूज करूं, असल में ये मुराद है कि ये आज़ा व जबारे खुदा की अमानत है, अल्लाह की अमानत में खयानत हमें नहीं करना चाहिए, दुरुस्त इस्तेमाल आज़ा व जबारे का होना चाहिए। आयत नंबर 69 में पहुंचे, ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है, कि फरमाया और हमने रसूल को शेर नहीं सिखाया, भाई अशआर नहीं सिखाया, और न ही ये इसके लिए शाया निशान है, शेर पढ़ना नबी के लिए शाया निशान नहीं है, ये तो बस एक नसीहत की किताब है और रोशन और खुली वाज़े किताब है, वमा अल्लमहु शेर वमा यनबगी लहू इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन व कुरआनुन मुबीन। आयत नंबर 69 है। यहाँ पर रुख कर दिया दोबारा जो है सूरह यासीन में नबुवत की तरफ, हमने अर्ज किया था कि सूरह यासीन उसूल दीन के ऊपर फोकस करता है, कभी कयामत के हवाले से डिस्कस करता है, कभी तौहीद के मैटर को डिस्कस करता है, कभी खुदा की अदालत और जजमेंट को डिस्कस करता है, कभी फिर नबुवत को डिस्कस करता है, कि बीच में एक आयत के अंदर इमामत को भी डिस्कस किया, और अपने नबी का डिफेंस कर रहे हैं खुदाए मुताल, फरमाते हैं कि भाई देखो तुम लोग समझते हो क्योंकि तुम्हारे यहाँ कल्चर बना है कि इस वक्त पोएट्री का जो है एक दौर दौरा है, तुम्हारे यहाँ माशरे के अंदर पोएट्री की तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्शन है, एक फैशन के तौर पे इस वक्त पोएट्री मौजूद है तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे दरमियान फेस्टिवल होते हैं, तुम्हारे दरमियान कॉम्पिटिशन होती हैं पोएट्री को लेकर और अरबी लिटरेचर्स को लेकर और दीगर चीजों को लेकर, तो ये मत समझो कि ये कुरान क्योंकि अरबी अदब और ग्रामर और फसाहत और बलागत और मैसेज के इनवान से एक ऐसी मुनफरिद चीज है कि जिसकी आज तक कोई हिस्ट्री अरब में कोई चीज नजर नहीं आ रही है, तो तुम लोग समझ रहे हो कि अच्छा ये अल्लाह के रसूल भी कोई बहुत बड़े शायर हैं, कोई बहुत बड़े पोइटर हैं, करा वमा लगा कि खुदा ये खुदा फॉर डिफेंस करके कहते हैं नहीं हमने रसूल को शेर नहीं सिखाया है और ये रसूल की शान में नहीं है, वो शायरी करता फिर है, वो जो है शायरी क्योंकि शायरी के कई पहलू हैं, अब ज्यादा मैं वक्त नहीं लूंगा आपको, देखें आसर जाहिलियत में जो शायरी होती थी वो गैर हकीकी शायरी थी, जैसे बहुत से शायर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि किसी की दिलाजारी हो जाए, लेकिन जरूरत पड़ने पर कभी डिस्कस हो सकते हैं एकेडमिकली तरीके से, बहुत से ऐसे शायर हैं जिनकी शायरी का कोई मैसेज नहीं है सिवाय लफाजी के, हत्ता मजहबी शायरी है, मैं सेंसिटिव उस पे बात, हत्ता मजहबी शायरी है, मजहबी शायरी के अंदर भी सिवाय लफाजी के कोई मैसेज नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई सोच नहीं, अगर वो करबला को छेड़ेंगे तो सिर्फ चाहेंगे कि इमाम हुसैन को ज्यादा से ज्यादा मुसीबत ज्यादा एक शख्सियत के तौर पर प्रेजेंट करें, उस मुसीबत के अंदर मौजूद इस्तकामत को, हिम्मत को, सब्र को, हौसले को, जुरात को, शुजात को कभी भी वो टच नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यही करेंगे, इमाम हुसैन एक छोटे से बच्चे की तरह पेश करेंगे, अम्मा मुझे मारा, अम्मा मुझे प्यासा रखा, अम्मा मुझे कत्ल किया, नऊज़ बिल्लाह, मैंने कहता ये नहीं करना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसी पहलू को क्यों आप फोकस रखें, नवा बनाएं, इसी को प्रेजेंट करें, मार्शल लिखें इसी के ऊपर, सिर्फ और फोकस ही फोकस आपका यही पहलू है जो गम का पहलू, उस गम के अंदर मौजूद इस्तकामत क्यों नहीं आ रही है, सब्र क्यों नहीं आ रहा, हौसला क्यों नहीं आ रहा, शुजात क्यों नहीं आ रही है, हक के ऊपर डट जाने का अंसुर पेश क्यों नहीं हो रहा है, जहाँ इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं प्यासा हूँ वहीं पर इमाम हुसैन ने यह भी फरमाया कि मैं दुश्मन के सामने प्यासा होने के बावजूद डट जाऊंगा, जहाँ हजरत अली अकबर ने बाबा से पानी मांगा वहां पर हजरत अली अकबर ने शुजात भी पेश किया है, यही उसी मजलूमियत के अंदर शुजात है, तो ये पहलू नहीं होता बाज़ औक़ात। अच्छा, बाज़ अशआर तो होते ही गैर अखलाकी हैं, आम शायरी आप देखते हैं, आप जानते हैं एक शायर होते थे मामदीना, आपको क्योंकि मशहूर है तो मैं नाम लेता, रोजे में है इसलिए मैं ज्यादा अशआर की तरफ शायर नहीं पढ़ूंगा उनके, तो इस तरह के जो शायर थे, मैं तो बचपन में ऐसा था हमारे पास एंटरटेनमेंट होती नहीं थी तो हम किताब पढ़ते थे, किताब में कोई लिमिटेशन नहीं होती थी, नावल भी होते थे, डाइजेस्ट भी होते थे, रिसाले भी होते थे, जो मजाहिया खाके होते थे, चांद नाम का एक रिसाला होता था, ये शायरों की शायरी होती थी, समझ में आती तो भी पढ़ते थे, ना समझ में आती क्योंकि और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं होता था। सर्दियों के मौसम में खासकर जब -20-25 डिग्री होते थे और बाहर खेलने के वसाइल नहीं होते थे, तो घरों में घुस के यही एंटरटेनमेंट हमारे पास रहता था। टीवी भी नहीं होता था, रेडियो घर के सरबराह के कब्जे में होता था, बहुत कम ही हमें मुयसर आता था। तो इसलिए जो है ये इन चीजों से एक तौफीक के इजबारी हम गुजरे हैं इन प्रोसेस से। इस्लाम ने कोशिश की है, देखो इस्लाम शायरी के खिलाफ नहीं है, अब ध्यान में रखें, इस्लाम इसका मतलब ये जो मैंने बताया कि इस्लाम शायरी के खिलाफ नहीं है, बल्कि शेर को हकीकत, मंतिक और सच्चाई का लिबादा पहनाना चाहता है इस्लाम। मसलन देखें, शुरू में जो बकवास किस्म की शायरी होती थी और जुमे के दिन इस शायरी के जो मुशायरे होते थे, इस्लाम ने उसको मकरूह करार दिया, कहा कि भाई जुमे के दिन मुशायरे नहीं करोगे, तुम लोग किसी और वादी में ले जाते हो, मजाज की वादी जो हकीकत से ताल्लुक नहीं रखता है। ये गाने और गजलें और जो नगमे वगैरह हैं, ये भी तो उसी शायरी से निकलते हैं ना, शायरी का एक ही हिस्सा है। अब गजलों में किसी हद तक जो है एक गहराई होती है, एक मैसेज भी होता है, एक इंसानी जज्बात की अक्कासी होती है। गानों को अगर हम उठा के देखें तो आजकल जो बहुत सारे गाने हैं या आजकल जो बहुत सारे जो म्यूजिक्स दुनिया के अंदर आए हैं मुख्तलिफ नामों के साथ, उनके अंदर मैक्सिमम जो चीजें देखते हैं तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट का नाम है सिर्फ, कोई मैसेज नहीं है। इस्लाम कहता है भाई इस शायरी को आप किसी मैसेज में लेके आओ। हुनर और फन की मुखालिफत इस्लाम ने नहीं, आर्ट का मुखालिफ नहीं है इस्लाम, आर्ट को दुरुस्त डायरेक्शन देना चाहता है। तखयलात में ना मत रहो, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन फलान ये वो, तखयलाती दुनिया नहीं, गैर अखलाकियात और तखयलात से निकाल कर जो है इस्लाम सच्चाई और मंतिक के राज। जैसा आलमा इकबाल की शायरी है, जैसे जो है बहुत सारे और शायर हैं, गालिब क्योंकि दोनों के दरमियान खड़ा है, जो गालिब भी किसी हद तक मसलन किसी तरह उसकी भी दोनों, अलबत्त दोनों पहलू पाए जाते हैं गालिब के अंदर भी, फैज अहमद फैज है, दीगर मुख्तलिफ जो है, साहिर लुधियानी, सागर सिद्दीकी है, जो है हमारे जो है शायर अवाम है हबीब जालिब साहब, वो भी जो है काफी अच्छी, बहरहाल उनकी पॉजिटिव चीजें हैं, कम से कम माशरती मसाइल को उसने ज्यादातर डिस्कस किया है। आप देखें इस्लाम अगर शायरी के खिलाफ होता तो ये वजह गदीर आप सुनते रहते हैं, इसी गदीर के अंदर एक छोटा सा एक वाकया है जिसको हम नजरअंदाज करते हैं। हम खतीब जो मेंबर पे आते हैं, खुतबे गदीर और ऐलान गदीर के बाद अल्लाह के रसूल उस पालान से या मेंबर से नीचे उतरे, उसके बाद एक शायर को बुलाया और फरमाया जितने भी शायर यहाँ पर मौजूद हैं वो आ जाएं यहाँ पर। फरमाया कि देखो अभी ये जो सारा वाकया यहाँ पर हुआ ना, ये जो सारा खुतबा में भी मैंने दिया जो ऐलान किया, इसको तुम शेर की जबान में डालो और इसके ऊपर शायरी करो और लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि शेर की जबान बड़ा मुअस्सर हथियार होता है। ये जो आर्ट और फन है और हुनर है ये बहुत ही अहम है, बहुत ही इंतहाई मुअस्सर है अगर दुरुस्त तरीके, अगर गलत हो तो बहुत बड़ा खतरनाक भी है, तकरीब भी पैदा कर सकता है, तकरीबकारी भी हो सकती है इसके अंदर। लिहाजा इस्लाम आर्ट और फन को दुरुस्त मफहूम पहनाना चाहता है। मसलन जैसे कोई मसलन होता है ना कि कैलीग्राफी है या कोई मुसव्विर तस्वीरें बनाता है, वो कह रहे हैं कि देखें असल चीज जो है ना ये नहीं है कि आप उसके तस्वीर की रंग क्या है, रंगों की आमेजिश क्या है। जैसे कि आजकल आर्ट गैलरीज के अंदर ये चीजें डिस्कस होती हैं, कौन सा रंग इस्तेमाल किया, कौन सा रंग किसके लिए सूट करता था, क्या बाबा असल चीज ये नहीं है, पहले डिस्कस करो तस्वीर का मैसेज क्या है, तस्वीर के पैगाम में जान क्या है, इससे वो क्या चीज यहाँ पर मुनाकिस करके रिफ्लेक्ट करके आपको समझाना चाहता है। सेकेंडरी तौर पे आएंगे कि इसकी डिजाइनिंग क्या है, क्वालिटी ऑफ कलर क्या है, मैचिंग ऑफ कलर क्या है, अच्छा किस हद तक रिफ्लेक्ट कर सका है, वो बात के मसाइल है। फर्स्ट थिंग इज टू मसलन मैसेज क्या है भाई, क्या कहना चाहता है तस्वीर से, ऐसे ही वो फन पारे वो क्या मतलब फन पारे, व्हाट मीन इज फन पारे, मैसेज क्या देना चाहता है, वो अहम है। हाँ मैसेज अगर मीनिंगफुल है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज रखता है, फिर सेकेंडरी चीजों के अंदर आएंगे। मौलाए कायनात से शेर के बारे में पूछा, उन्होंने कहा हर एक ने किसी वादी में घोड़े दौड़ाए हैं, आप किसको जो है सबका दे देंगे। फिर मौला ने उस हकीकी का मैसेज देखो शेर का, वो कहना क्या चाह रहा है, असल चीज वो है। फरमाया कुरान मजीद तुम्हारे समाज में राइज, तुम्हारी सोसाइटी में जो कल्चर बना हुआ है शेर और शायरी का, ये शेर की किताब नहीं है जो तखयलात और ख्यालात की दुनिया की अक्कास होते हैं, कुरान मजीद अल्लाह की किताब है और जिक्र है। रह गई एक आयत रह गई, अगर एक दो मिनट आप वेट करें तो इसको कंप्लीट करें, 70 आयतें और उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक मीटिंग या एक जलसा और रहेगा कि सूरह यासीन بفضل خدا متعال ماہ مبارک رمضان میں کمپلیٹ ہو جائے گا, اور کنٹینیو اگر آپ لوگ رکھنا چاہیں گے تو انشاءاللہ کسی اور سورہ کے بعد ہم ایک جلسہ زیادہ سے زیادہ اور ہوگا. جو آیت نمبر 70 ہے, فرمایا لیم درا من کان حیاً, تاکہ جو زندہ ہیں. یہ قرآن ذکر ہے, کھلی کتاب ہے. کیوں ہے؟ اس لیے تاکہ جو زندہ ہیں انہیں تنبیہ کرے اور کافروں کے خلاف حتمی فیصلہ ہو جائے. یعنی یہ قرآن ایسے لوگوں کو نصیحت کرتا ہے جن میں زندگی کے آثار موجود ہوں, یعنی چلتی پھرتی لاشیں نہ ہوں بلکہ وہ اندرونی طور پر بھی زندہ ہوں, اندرونی طور پر وہ بینا آنکھ رکھتے ہوں, عقل مندی رکھتے ہوں, بیدار دل رکھتے ہوں, بیدار دماغ رکھتے ہوں. اور کافروں کے بارے میں بھی جو انکار کرتے رہتے ہیں, ہمیشہ ان کے لیے حجت پوری کرنے کے لیے آیا ہے تاکہ وہ اپنے کفر پر ڈٹ نہ جائیں اور اپنے کفر پر کھڑے نہ رہ جائیں, ان کو یہ متنبہ کرنے کے لیے آیا ہے. اور ذہن میں رکھو کافروں کے بارے میں جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ ایک اٹل فیصلہ اور حتمی فیصلہ ہے, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. قرآن مجید انسان کے باڈی کی موومنٹ کو زندگی سے تعبیر نہیں کرتا, اگر کرتا ہے تو پھر اس کو پیسیفائی کر دیتا ہے کہ وہ جن کا جسم چل پھر رہا ہے باڈی کے اعتبار سے, وہ بلڈ سرکولیشن ہو رہی ہے اور ان کا آکسیجن چل رہا ہے, ہارٹ جو بیٹنگ اور پمپنگ ہے وہ ٹھیک ہے چل رہا ہے. قرآن مجید کے نزدیک جو زندہ لوگ ہیں وہ فکر سوچ اور عمل اور کریکٹر کے اعتبار سے جو لوگ ہیں وہ زندہ ہیں. اس لیے فرمایا جو فکر سوچ عمل اور کریکٹر کے اعتبار سے جو لوگ زندہ ہیں, اگر ان کا جسم مر بھی گیا ہو تو قرآن نے ان کو زندہ کہا بلکہ زندوں سے کہا بڑھ کر ہیں اور رزق بھی پالتے ہیں پاتے ہیں جو شہدا کے بارے میں ہیں, فرمایا وہ احیا ہیں اور زندہ ہیں اور رزق بھی پاتے ہیں. اور اسی لیے بار بار زندوں سے مخاطب ہو کر خدا کہتا ہے کہ جب اللہ کے رسول اور قرآن تمہیں آواز دیتے ہیں تو لبیک کہہ کے اس آواز کے پیچھے جاؤ, اس لیے کہ وہ تمہیں زندہ کرنا چاہتے ہیں. یہ کن سے مخاطب ہو رہے ہیں؟ مردوں سے تو نہیں ہو رہے ہیں, قبرستان کے لوگوں کو تو نہیں کہہ رہے ہیں, ہم ہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو ہمارے جسم زندہ ہیں. کہہ رہے ہیں جسم کی زندگی زندگی نہیں, اصل میں تمہاری روح سوچ فکر اور کریکٹر جو ہے وہ بنیادی چیز ہے, اگر وہ ٹھیک راستے پر ہے تو یہ زندگی کی علامت ہے. بہت شکریہ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 70 آیتیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں, زیادہ سے زیادہ ایک میٹنگ اور ہو سکتی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ کی اس میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور والامر الیکم, آپ لوگوں کو حق ہے کہ آپس میں ڈسکس کریں, ڈیسائیڈ کریں کہ کون سا اگلا سورہ ہونا چاہیے, یا اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں رکھنا.
جزاک اللہ, انشاءاللہ بالکل کنٹینیو رکھیں گے. تو مجھے اس پہ چیٹ بھی لوگ کر لیں اگر کوئی سورہ کا وہ نیکسٹ سورہ جس کی تفسیر چاہتے ہیں, تو پھر ہم آپس میں ڈسکس بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ویسے تو ٹائم ختم ہو گیا ہے, لیکن اس کے باوجود اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو یا تو ابھی موقع ہے, ورنہ اگلے ہفتے شاید عید کا دن ہوگا تو وہ بھی دیکھنا ہے کہ رکھنا ہے یہ پروگرام یا نہیں.
جی, میرے لیے یہ ہے کہ آپ تمام دوستوں سے آپس میں ڈسکس کے لیے واٹس ایپ گروپس کے تھرو یا کسی اور اس کے تھرو, یہاں ایک یہ آیا وی کچھ چیک سم سورہ فرام 13 پارہ, یعنی 20 پارے سے ایک تو یہ مشورہ آیا ہے. واٹس ایپ گروپ پہ بھی آپ تھرو دا چیٹ جو ہے آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں, میری طرف سے کوئی وہ نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ لوگ چلیں گے اس کے حساب سے چلیں گے, عید کے حوالے سے بھی دیکھ لیجئے اور اگلے نیکسٹ سورہ ایک آخری ایک جلسہ اور ہوگا, ایک اور ہماری ڈسکشن.
جہنم کے اوپر بیسڈ کوئی سورہ, یہ بھی ایک ریکویسٹ آئی ہے.
سورہ واقعہ تو دونوں سائٹوں کے اوپر بیسڈ ہے, صاحب الیمین اور یسار, اور پھر جہنم اور جنت کے بارے میں. میں جہنم کے حوالے سے ڈسکس ہو سکتی تھی, میں کیونکہ ماہ رحمت ہے تو میں نے کہا جہنم کی باتیں تھوڑی سی لائٹلی رکھی جائے.
سورہ واقعہ کے لیے ایک اور وہ ہے سپورٹ، میں بھی سورہ واقعہ کو سپورٹ کر رہا ہوں.
جی سورہ واقعہ کو دو سپورٹ ملے ہیں، تو انشاءاللہ فائنل کر لیں گے تو پھر مجھے انفارم کر دیجیے گا، تو اسی حساب سے لیں گے انشاءاللہ.
ٹھیک ہے انشاءاللہ.
انشاءاللہ سلامت رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، مولا آپ سب لوگوں کو آباد رکھے. دعائے مزمنہ کوئکلی پڑھتے ہیں اور اختتام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. في أمان الله. خدا حافظ.
في أمان الله. في أمان الله. خدا حافظ.